पृष्ठ संख्या 228, चतुर्दश अध्याय का पांचवा भाग। हेगल के अनुसार निषेध या विरोध का अर्थ स्पष्ट करके अब हम उनके सिद्धांत का वर्णन करते हैं। हेगल के अनुसार जो कुछ है वह सब निरपेक्ष विज्ञान का विकास मात्र है। यह विकास निषेध या विरोध के कारण संभव होता है। निषेध या विरोध शक्ति है, जीवन है, प्राण है, गति है, बुद्धि है, विकास है। विज्ञान का विकास त्रिक रूप या ट्राइएडिक में होता है। ये तीन रूप हैं, पक्ष थेसिस, प्रतिपक्ष एंटीथेसिस और समन्वय सिंथेसिस। हेगल के इस सुप्रसिद्ध सिद्धांत का नाम है द्वंद्वात्मक तर्क या द्वंद्वमूलक समन्वय या डायलेक्टिक, जिसे हम भेद विशिष्ट अभेद या संक्षेप में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कह सकते हैं। सत और असत, विधि और निषेध, अभेद और भेद, सत्ता और विरोध, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। दोनों अपूर्ण हैं। इस अपूर्ण को पूर्ण मानते ही उसमें से उसकी अपूर्णता को सूचित करता हुआ उसका विरोध निकल पड़ता है। पक्ष में से प्रतिपक्ष का निकल पड़ना स्वाभाविक है। प्रत्येक अपूर्ण विज्ञान अपने विरोधी विज्ञान को उत्पन्न करता है। इस विरोधी शक्ति से ही उनका विकास होता है। किंतु तत्व का स्वभाव विरोध नहीं हो सकता, अतः इस विरोध का समन भी आवश्यक हो जाता है। विरोध भेद रूप है और भेद सदा अभेद पर आश्रित रहता है। अतः इस विरोध या भेद में अनुगत अभेद को खोजने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता के कारण पक्ष और प्रतिपक्ष का, अभेद और भेद का सामंजस्य करना पड़ता है। यह सामंजस्य समन्वय में होता है। यह समन्वय भेद विशिष्ट अभेद या विशिष्टाद्वैत है, किंतु वह समन्वय भी अपूर्ण है और इसीलिए यह स्वयं एक पक्ष बन जाता है। पक्ष बनते ही इसमें से फिर इसका प्रतिपक्ष निकल पड़ता है और फिर इन पक्ष और प्रतिपक्ष के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह समन्वय भी फिर पक्ष बन जाता है और फिर यही त्रिक क्रम चलता रहता है। जब तक अपूर्णता है तब तक यह क्रम चलता रहेगा। यह क्रम तभी समाप्त होगा जब निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान पर पहुंच जाएंगे। पूर्ण विज्ञान पूर्ण समन्वय है। यह पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि पक्ष वही बनता है जो अपूर्ण हो। समस्त विश्व इस पूर्ण विज्ञान का भेद है और यह पूर्ण विज्ञान उसमें अनुगत अभेद है। यह पूर्ण विशिष्टाद्वैत रूप है। समस्त विश्व इसका विशेषण है और यह विश्व में अंतर्यामी है। विश्व के समस्त पदार्थ इसके अवयव हैं और यह उनका अवयवी है। विश्व इसका शरीर है, यह विश्व की आत्मा है। पृष्ठ संख्या 229। इस विश्व आत्मा को पाने के लिए ही सृष्टि का विकास होता है। समस्त भेद निषेध या विरोध के पीछे इसकी ही शक्ति है। प्रत्येक वस्तु इसको पाने के लिए विकास उन्मुख है। यह अभेद भेद बाह्य नहीं है। यह पूर्ण विज्ञान विश्व के पार नहीं है। यह विश्व में ही अनुस्थित है। प्रत्येक वस्तु इसी से अनुप्राणित है और न्यूना अधिक रूप में इनकी अभिव्यक्ति करता है। समन्वय में पक्ष और प्रतिपक्ष का विरोध शांत हो जाता है। अतः समन्वय को निषेध का निषेध या विरोध का विरोध कहते हैं। वस्तुतः सत्ता समन्वय की ही है। पूर्ण विज्ञान पूर्ण समन्वय है। अतः पूर्ण विज्ञान की निरपेक्ष और पूर्ण सत्ता है। चित ही सत है, बोध ही सत्ता है। अन्य सब विज्ञान अपूर्ण समन्वय है, अतः उनकी अपूर्ण सत्ता है। अन्य सब विज्ञान पूर्ण विज्ञान की विविध अपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। इन विज्ञानों में तारतम्य है। जिस विज्ञान में समन्वय की मात्रा जितनी अधिक है वह उतना ही कम अपूर्ण है। वह पूर्णता की ओर उतना ही अधिक अग्रसर है। समन्वय में पक्ष और प्रतिपक्ष का विरोध ही दूर होता है। पक्ष और प्रतिपक्ष का विनाश नहीं होता। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों परस्पर अविरुद्ध होकर समन्वय के विशेषण या अंग बन जाते हैं। इस कारण इस विकास में कोई वस्तु पीछे नहीं छूटती। किसी वस्तु का नाश नहीं होता, किसी वस्तु का निराकरण या अपलाप नहीं होता। पक्ष और प्रतिपक्ष में जो विरोध रूपी दोष था उस दोष का ही निराकरण होता है। पक्ष और प्रतिपक्ष अपना विरोध छोड़कर और समन्वय के विशेषण बनकर उसके उन्नत स्वरूप के अंग बन जाते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष के समस्त गुण समन्वय गुणों के में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार इस विकास में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पूर्ण विज्ञान में समस्त विश्व के गुण विद्यमान हैं। यह अशेष कल्याण गुण संपन्न है। दर्शन शास्त्र विज्ञान की इस यात्रा का इतिहास है। विज्ञान की प्रगति रिक्त सत या वेयर अफर्मेशन से प्रारंभ होकर असत या निगेशन में होती हुई और उसे भी अपने साथ लेती हुई सदसत में व्याप्त रहते हुए भी सदसत विलक्षण पूर्ण सत या रीअफर्मेशन की ओर होती है। मंडन या कंस्ट्रक्शन से प्रारंभ होकर खंडन या डिस्ट्रक्शन में होती हुई और उसे भी अपने साथ लेती हुई मंडन खंडन में व्याप्त रहते हुए भी उसे विलक्षण पुनर्मंडन या रिकंस्ट्रक्शन की ओर होती है। अमूर्त सामान्य या अब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल से प्रारंभ होकर विशेषों या पार्टिकुलर में होती हुई और उन्हें भी अपने साथ लेती हुई सामान्य विशेष में व्याप्त रहते हुए भी उनसे विलक्षण मूर्त सामान्य या कंक्रीट यूनिवर्सल या पूर्ण व्यक्तित्व इंडिविजुअल की ओर होती है। पृष्ठ संख्या 230। अपरोक्ष इंद्रिय अनुभूति या इमेडिएसी से प्रारंभ होकर बुद्ध विकल्पों या मेडिएसी में होती हुई और उन्हें भी अपने साथ लेती हुई दोनों में व्याप्त और दोनों से विलक्षण स्वानुभूति या सेल्फ मेडिएशन की ओर होती है। अभेद या अद्वैत या यूनिटी से प्रारंभ होकर भेद या द्वैत या डिफरेंस में होती हुई और उसे भी अपने साथ लेती हुई भेदाभेद या द्वैताद्वैत में व्याप्त रहते हुए भी उनसे विलक्षण भेदांतर अंतर्यामी अभेद या विशिष्टाद्वैत या यूनिटी इनडिफरेंस की ओर होती है। स्पष्ट है कि विज्ञान की प्रगति पक्ष से प्रारंभ होकर प्रतिपक्ष में होती हुई और उसे भी अपने साथ लेती हुई पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में व्याप्त रहते हुए भी दोनों से विलक्षण एक अद्वितीय समन्वय की ओर होती है। विरोध निषेध या भेद कोई भयानक या अवांछनीय वस्तु नहीं है, यह तो विश्व का प्राण है, किंतु विरोध तत्व का स्वरूप नहीं है, अतः इसका समाधान भी अवश्य होना चाहिए। यह समाधान होता है समन्वय में। समन्वय विरोध का ही बोध करता है, पक्ष और प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करता, और न समन्वय पक्ष और प्रतिपक्ष का योग मात्र है, वह दोनों से विलक्षण नई वस्तु है। उदाहरण के लिए अंडे से पक्षी उत्पन्न होता है और एक शिशु बालक होकर युवक बनता है। अंडा पक्ष है, अंडे के भीतरी भाग का धीरे धीरे लोप होना प्रतिपक्ष है, अंडे में से पक्षी निकलना समन्वय है। शैशव पक्ष है, बाल्यावस्था प्रतिपक्ष है, युवावस्था समन्वय है। अब क्या यह कथन सत्य होगा कि पक्षी ने अंडे और उसके भीतरी भाग का नाश कर दिया, या युवा अवस्था ने शैशव और बाल्यावस्था का नाश कर दिया? क्या पक्षी में अंडा और उसका भीतरी भाग तथा युवा अवस्था में शैशव और बाल्यावस्था प्रकट और विकसित रूप में विद्यमान नहीं है? और क्या अंडे और उसके भीतरी भाग में पक्षी तथा शैशव और बाल्यावस्था में युवा अवस्था गुप्त और अविकसित रूप में विद्यमान नहीं है? विज्ञान के विकास में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, वह विकसित वस्तु का अंग बनती है। समन्वय में पक्ष और प्रतिपक्ष अपने विरोध को छोड़कर प्रकट और उत्कृष्ट रूप में विद्यमान रहते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर समन्वय के रूप में विकसित होते हैं, और यह विकसित तभी संभव हो सकता जब समन्वय पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में अंतर्निहित हो। अतः समन्वय भी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में गुप्त रूप से अनुगत रहता है। विकास का अर्थ है इस गुप्त शक्ति को प्रकट रूप देना। यह प्रकट रूप विरोध और फिर विरोध के विरोध द्वारा संभव होता है। पृष्ठ संख्या 231। समस्त विश्व में निरपेक्ष विज्ञान गुप्त रूप में अंतर्निहित है। विश्व के विकास का अर्थ इस गुप्त रूप को प्रकट करना, इस सुप्त शक्ति को जागृत करना, अपने विस्मृत स्वरूप को प्राप्त करना है। कुछ लोगों का आक्षेप है कि हेगल ने तर्क के विरोध नियम को तिलांजलि दे दी है, किंतु यह आक्षेप मिथ्या है। यह सत्य है, जैसा हम ऊपर बता चुके हैं, कि हेगल को विरोध नियम उस रूप में स्वीकार नहीं है जिस रूप में तर्कशास्त्री उसे मानते चले आ रहे थे। हेगल का तर्क अमूर्त विज्ञानों का तर्क नहीं है, वह मूर्त विज्ञानों का तर्क है। हेगल के अनुसार वस्तु जगत में आत्यंतिक विरोध असंभव है। विरोध का असली अर्थ है भेद। भेद सदा अभेद पर आश्रित रहता है। भेद गौण है और अभेद के विशेषण के रूप में ही उसकी सत्ता है। अतः विरोध भी गौण है, वह केवल साधन रूप है, साध्य है, विशिष्टाद्वैत रूप समन्वय। विरोध नियम को मानने के कारण ही हेगल के दर्शन में समन्वय की आवश्यकता होती है। विज्ञान इतना असक्त नहीं कि वह विरोध जाल से स्वयं को मुक्त न कर सके। विरोध प्रगति का आवश्यक साधन है, किंतु है साधन ही साध्य नहीं। तत्व का स्वरूप विरोध नहीं है, अतः इस विरोध का अतिक्रमण करने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति समन्वय करता है। समन्वय विरोध का विरोध या निषेध का निषेध या भेद विशिष्ट अभेद है। विरोध रहता अवश्य है, किंतु उसका विषैला डंक निकाल दिया जाता है। भेद की सत्ता अवश्य है, किंतु वह अभेद के विशेषण के रूप में ही। द्वितीय, यह भी स्मरणीय है कि इस विरोध में शक्ति निरपेक्ष विज्ञान से ही आती है। निरपेक्ष विज्ञान समस्त विश्व में गुप्त रूप से अंतर्निहित है। विकास का अर्थ इस गुप्त स्वरूप को प्रकट करना है। निरपेक्ष विज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब विज्ञान अपूर्ण है। यह अपूर्णता ही भेद का मूल है। जब अपूर्ण विज्ञान को भ्रमवश पूर्ण मान लिया जाता है, तो उसकी अपूर्णता बलात् फट पड़ती है और उसमें से ही उसका विरोधी उपस्थित हो जाता है। अतः अपूर्णतानिष्ठ विरोध में शक्तिपूर्ण विज्ञान से ही आती है। विरोध में स्वयं शक्ति नहीं है। तृतीय, इस विरोध के कारण किसी वस्तु का निराकरण या अपलाप नहीं होता। विकास में कोई वस्तु परित्यक्त नहीं होती, उसको उत्कृष्ट बनाकर समन्वय में संग्रहित कर लिया जाता है। प्रत्येक वस्तु में यह शक्ति है कि वह अपने विरोधी को उत्पन्न करके फिर उसे आत्मसात कर ले। समन्वय में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों विशेषण रूप से विद्यमान रहते हैं। विरोध विकास का आवश्यक साधन है। अतः यह कथन कि हेगल को विरोध नियम मान्य नहीं है दुस्साहस मात्र है।